بسم الله الرحمن الرحيم هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات پڑھیے محمد والے محمد ہماری بحث سمٹ رہی ہے گوئے کہ بہت سی باتیں کہنے کی تھیں لیکن دن ایسے تیزی سے نکل گئے مگر اب مراحل آئندہ بہت آسان ہوتے چلے جائیں گے اس لیے کہ آپ کی ہماری دوستی ہو گئی ہے اب ہم آپ کو سمجھنے لگے ہیں آپ بھی ہمیں ہماری گفتگو کل یہاں پر ٹھہری تھی کہ انسان کی شناخت کے لیے جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ وہ جماد سے افضل ہے نبات سے افضل ہے اور حیوان سے افضل ہے اس کی افضلیت کیوں ہے شناخت یہی ہے وائے کیوں اچھا ہو گیا سب سے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا سورہ اعراف قرآن کا ساتواں سورہ ہے اس کی 169 آیت 169 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ہم نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے کس کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے جو روزہ نہیں رکھتے ان کے لیے جو حج کو نہیں گئے ان کے لیے نہ اس آیت میں نہیں کہتا بے نمازیوں کے لیے نہیں کہتا اس آیت میں ہم نے عقل دی ہے استعمال نہیں کرتے ہم نے عقل دی ہے مگر استعمال نہیں کرتے ہم نے انہیں آنکھ دی ہے دیکھتے نہیں ہم نے انہیں کان دیے ہیں سنتے نہیں تو معلوم ہاں امپراپر یوز آف فیکلٹیز یعنی حواس خمسہ کا صحیح استعمال نہ کرنا جہنم میں لے جاتا ہے ہے عجیب و غریب جملہ کہہ گیا میں امپراپر یوز آف دی فیکلٹیز یعنی حواس ذات پروردگار نے جو دیے ہیں ان کو اگر صحیح استعمال نہ کہیں نہیں کریں گے تو وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا قرآن نے کہہ رہا ہے کثیر بہت سے ہمارے پاس کثرت کی اہمیت نہیں ہے کثیرم من الجن والانس بہت سے انسان اور جن جہنم میں جائیں گے اس کیوں جائیں گے اس لیے کہ عقل دی ہے استعمال ہی نہیں کرتے حواس کو صحیح استعمال نہیں کیا جہنم میں چلے گئے وہ اولائک کل انعام یہ جانور جیسے ہیں اس کے بعد کرنا بل ہم ادل جانور سے بھی بدتر ہیں کم از کم جانور فطری رہنمائی کو تو عمل کرتا ہے ذرا یہیں پر میری بحث ہے جو میں نے چھوڑا تھا ان اردنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنها واشفقن منها فحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا ہم نے امانتوں کو زمینوں کے حوالے کرنا چاہا آسمانوں کے حوالے کرنا چاہا سورج و چاند کے قندیلوں کے حوالے کرنا چاہا مگر یہ لوگ صبح نے کرنا ہمیں نہیں چاہیے وہ کیا امانت ہے بحث ہے میں تلاش میں ہوں علماء سے بھی خواہش کرتا ہوں جو اب تک مجھے نتیجہ ملا ہے زمین کو اختیار سے گردش کرنے کا حق نہیں ہے تو توجہ کا طالب ہوں. زمین کی گردشیں اختیاری نہیں ہیں, اس کا نام ہے اضطراری, ایسی کہ خدا نے لگا دیا اس مسیر پر وہ چل رہی ہیں. چل رہی ہیں کیسے چل رہی ہیں؟ آج کیا تاریخ ہے؟ آج کی تاریخ یعنی 12 مارچ, ٹھیک ہے. آج کی تاریخ میں سن رائز کیا تھا بھائی؟ سورج کب نکلا کراچی میں؟ 7:05 پر, مثلاً کہہ رہا ہوں, پریسائسلی ضروری نہیں ہے. 7:05 پر سورج نکلا. میرا نوجوان خصوصاً غور کریں, 10 ملین ایئرز پہلے, پھر 12 مارچ, کون سی تاریخ؟ اسی تاریخ کو, 10 ملین ایئرز بیفور. سورج کب نکلا تھا؟ کہا ابھی. 10 ملین ایئرز آفٹر, 10 ملین ایئرز آفٹر سورج نکلے گا 12 مارچ کو. کب نکلے گا؟ وہی اسی ٹائم پر. اس لیے کہ زمین کو اختیار نہیں ہے گردش کیسے کرے, اس نے مسیر بتا دیا ہے, اس نے راستہ بتا دیا, اسی راستے پہ گھومنے کا نام ہے تسبیح. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. راہ خدا پہ چلنے کا نام تسبیح ہے. کہہ گیا جو کہنا تھا. راہ خدا میں چلنے کا نام ہے تسبیح. زمین گردش کر رہی ہے, تھکتی نہیں ہے. ارے بھائی 5 بلین ایئرز سے چل رہی ہوں, آئی ایم ٹائرڈ ناؤ, آج جو ہے تھک گئی ہوں, لیٹ می سلیپ, مجھے سونے دیجئے پروردگار. نہ سو نہیں سکتی. زمین کی گردشوں میں اختیارات چھین لیے گئے ہیں. آسمانوں کی گردشیں, کہکشانوں کی گردشیں پریسائز ہیں. ہر ذرہ اپنے ذمہ داریوں کو پوری طرح سے ادا کر رہا ہے جیسے اسے بتایا گیا ہے. ہر ذرہ, ہر آٹم اپنی اپنی ذمہ داریوں کو جیسے بتایا گیا ہے ویسے ادا کر رہا ہے. شاید اسی کا نام ہے تسبیح. تسبیح, بڑی تسبیح ہاتھ میں لے کر کے تسبیح پھیروں کس کو گھیروں. ہاں, تسبیح پھیروں کس کو گھیروں. تقویٰ اگر بتانا ہے تو رات کے پردے میں کمرے میں بتائیے. تقویٰ ایبیلیٹی کا نام ہے, ظہور کا نام نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. تو زمین کو اختیارات نہیں ہیں. میرے نوجوانوں, میرے بچوں, میری جوان بہنیں, ان سے گزارش ہے کہ آج کی مجلس ذرا سا یاد رکھیں کہ سارے یونیورس میں جو گیلیکسیز چل رہی ہیں بالکل پریسائز آن ٹائم, کبھی 1 سیکنڈ کا ادھر ادھر ہوتا نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب آئیے انسان کے مقابل میں. انسان سوئے یا اٹھے, اختیار ہے کہ نہیں؟ سوئے کی نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ سو گیا. اس لیے کہ رات بھر شریک رہا. مولا کہتا ہے کہ اذا ادرت النوافل بالفرائض فارفضوها. اگر نوافل مستحب چیزیں واجب پر اثر کر رہی ہیں, مستحب چیزوں کو چھوڑ دو. مستحب کی اہمیت نہیں, واجب کی اہمیت. فرفضو, ہاں چھوڑ دو ان چیزوں کو, اس لیے کہ واجب ہے. حتیٰ کہ واجب پر اثر کرنے والے مستحبات کو بھی چھوڑ دو. نماز شب کی اہمیت نہیں ہے, صبح کے 2 رکعت کی اہمیت ہے. کوئی نماز رات بھر جا کے پھر صبح کی نماز نہ پڑھے. اچھا, سونے کا اختیار رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ اٹھوں کہ نہ اٹھوں, سوؤں کہ نہ سوؤں, دیکھوں تو کیا دیکھوں, اختیار ہے. سنوں تو کیا سنوں, اختیار ہے. بولوں تو کیا بولوں, اختیار ہے. چلوں تو کدھر چلوں, اختیار ہے. ہاتھ اٹھاؤں تو کس کے لیے, اختیار ہے. تو معلوم ہوا انسان کے پاس ایک چیز ہے جو زمینوں کے پاس نہیں ہے, آسمانوں کے پاس نہیں ہے, بلند پہاڑیوں کے پاس نہیں ہے. اس کا نام ہے اختیار. توجہ کا طالب ہوں. اختیار, یہ کہہ رہا خدا میں نے تجھے ایک امانت دی ہے, وہ امانت ہے اختیار. تو مختار ہے, مجبور نہیں. ہے مجبور نہیں. یہ کیسا مجبور ہو گیا, تھوڑے گھر میں بہ گیا, تھوڑی گاڑی میں بہ گیا. مجبور کیسے ہو گیا؟ تجھے تو مختار آیا تھا. مختار کو کیسے پتا چلے کہ یہ مختار ہے یا مجبور ہے؟ کہ دیکھو ان لوگوں کو جنہوں نے اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے, اشارہ کیا تو سورج پلٹ کر کے آ گیا. بتایا مختار یہ ہے اس لیے کہ انہوں نے زندگی کو اس کے ارادے پہ ڈھالا تھا. ایک ہے اختیار, تو انسان میں اختیار ہے. یہاں پر بحث ہے آیا انسان روبوٹ ہے. آج کل بہت سے مسلمان بھائی بھی سوال کرتے ہیں, اپنے مومن بچے بھی سوال کرتے ہیں کہ جب معلوم تھا کہ حسین شہید ہونے والے ہیں, یزید مارے گا, سب کچھ معلوم تھا, یہ چکر ہی کیا چلایا؟ یہ سوال ہے, بات باقاعدہ سوال کیا جاتا ہے. آج کے نوجوان خصوصاً برادران اسلامی جن کو معلوم نہیں ہے وہ سوال کرتے ہیں. ہماری عادت جواب دینے کی ہے, ہم سوالوں سے گھبراتے ہی نہیں. اس لیے کہ سوالوں سے اس لیے نہیں گھبراتے, اس لیے کہ وہاں سے لیا ہے جس نے آواز دی تھی سلونی, ہم سے پوچھو. تو جہاں بھی جائیے ہمارے پاس آئیے, دنیا بھر تلاش کر کے جائیے ہمارے پاس آئیے, ہم لاجیکل جواب دیں گے. اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہمارے سے بڑے علماء ہم پوچھ لیا کریں گے, مگر جواب آپ کو اطمینان کا دیں گے. برادران عزیز یاد رکھ لیجئے, بحث ہے کہ یزید مارنے والا تھا, حسین کی شہادت تھی, رسول اللہ نے رویا تھا, یہ سب کچھ ہونے والا تھا. تو پھر ہونے والا تھا تو اس پہ کیوں رو رہے ہو؟ جب ہونے والا تھا, خدا چاہتا تھا یہ ہو گیا. اچھا, ہونے والا تھا الگ ہے, خدا چاہتا تھا الگ ہے. توجہ کا طالب ہوں. قرآن کی سب سے اہم فلسفی یہی ہے. قرآن نے صاف کہہ دیا گناہ تم کرتے ہو, نیکیوں میں میں شریک ہوں. گناہ تم کرتے ہو, مما کسبت ایدیکم, تمہارے ہاتھوں نے ارن کیا ہے, تم نے یہ گناہ کیا ہے. ہم پر کبھی نہ کہو. توجہ کا طالب ہوں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, خدا کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. مگر آج کی دنیا یہ کہتے ہیں جی نہیں, جہنم میں بھی کسی کو بھیج دے خدا, وہ بھی اس کا انصاف ہے. یہ لیجئے, یزید کو بھی خدا بخش دے گا. اچھا, خدا آپ کو بخشے. میں نے کہا اگر خدا یزید کو بخش دے, میں یزید کو بخشنے والا. خدا نے حقوق العباد حقوق اللہ کہا ہے. خدا نے کہا ہے ایک میرا حق ہے, ایک بندوں کا ہے. جو میرا حق ہے مجھے بخشنے کا حق ہے, جو بندوں کا حق ہے اس میں بخشنے کا اختیار مجھے بھی. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. مولانا آپ نے, مولانا آپ نے خدا کو مجبور ثابت کیا. جی نہیں, مجبور نہیں. آپ سے سوال کرتا ہوں, خصوصاً میرے تمام بھائیوں سے, نوجوان بچوں سے سوال کرتا ہوں. دیکھیں, ٹماٹر کا بیج بوئیے, مصلی بچھائیے, روزانہ صبح سے شام تک سجدہ کیجیے, خدایا اس کو تو سیب کا درخت بنا دے, انک علی کل شیء قدیر. توجہ کا طالب ہوں. جی روزانہ پروردگار میں نے ٹماٹر کا بیج بویا ہے, تو اس کا سیب کا بنا دے. سوال ہے کیا خدا ٹماٹر کے درخت کو سیب کا بنانے کی قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ پریشانی ہے, جواب دیجئے. اللہ یہ پاور رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے کہ ٹماٹر کے درخت کو سیب کا بنا دے؟ رکھتا ہے, رکھتا ہے مگر نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ جو اصول اس نے بنایا ہے اس اصول کو خود نہیں توڑتا. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر. اے ہے है समझने की कोशिश कीजिए। जो प्रिंसिपल उसने बनाया है, जो उसूल उसने बनाए हैं, वो उसूल को तोड़ता नहीं है। कुरान की आयत दे रहा हूं, इन्ना रब्बी अला सिरातिम। ये क्या माने भाई? रोजाना मैं कह रहा हूं एहदिना सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगारा सीधे रास्ते की तरफ हिदायत कर, या एक सीधे रास्ते पर बाकी रख। कुरान ये कह रहा इन्ना रब्बी अला सिरातिम। ये क्या माने सिराती मुस्तकीम? खुदा भी सिराते मुस्तकीम पर है। ये क्या माने भाई? माने ये है कि उसने जो परफेक्ट उसूल बनाए हैं उन उसूलों को तोड़ता नहीं है। तोड़ दे तो जालिम हो जाएगा। टमाटर के दरख्त को सेब का बना सकता है, बनाता नहीं है। क्यों नहीं बनाता? इसलिए कि उसने उसूल बनाया है। तवज्जो का तालिब हूं। उसूल क्या बनाया? उसूल यह बनाया कि उसकी खिलकत की करामत यह है कि जब भी किसी चीज को खल करता है, इज़ा अरादा शयन अन यकूल लहू कुन फयकून, वो जब कुन कहता है तो फयकून हो जाती है। यह उसका इशारा है, उसने उसूल बना रखा है। जहां भी उसूल आया, जान में जान मिलाई, दूसरी जान बन गई। ये उसूल है। नहीं समझ में नहीं आई? जान में जान क्या बताना? चार मैंने वादा किया था क्लोनिंग से मुतालिक बहस करूंगा। सभी बच्चे तैयार हैं? जी जी हैं मेरे साथ आप लोग? जरा इसी सलवात पढ़ी कि सब लोग मैंने जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन जनरल नॉलेज है। मैं कोई डॉक्टर वगैरह नहीं हूं। और इस जनरल नॉलेज को देखिए, जरा फजीलत का छींटा देते भी जाऊंगा। लोग आते हैं हमारे पास, मौलाना डीएनए क्या है? अरे भाई मैं फिक का आदमी हूं, मैं एक मौलवी हूं, मुझसे डीएनए क्या सवाल कर रहे हो? लेकिन मालूम है कि हमारा मोमिन उलमा से इतनी तवक्को रखता है कि वो जनरल नॉलेज से भी अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं। इसलिए कि मौलाना डीएनए क्या है, मैंने कहा मुझे दो मिनट दीजिए, यहीं तशरीफ रखिए, अभी बता दो। अंदर गया मैंने, नेट पे बैठ करके डीएनए सर्च इंजन, दो मिनट में जवाब आया। मैंने नौजवान से कहा ये डीएनए की ये थ्योरी है, ये इसका फुल फॉर्म है। देखा मौलाना, ही इज वेरी स्मार्ट, बहुत होशियार है मौलवी, तो बहुत होशियार है। डीएनए की पूरी तारीफ बता दिया दो मिनट में। उसको पता नहीं कि मेरा रब किधर है। तवज्जो का तालिब हूँ। अजीब और गरीब कह बता रहा हूँ, मैं मरबूत हूँ एक ऐसे खजाने से जहां से इंफॉर्मेशन मिलती है। अब इमाम के पास लोग जाते थे, वो मरबूत है उस खजाने से। जो सवाल कीजिए, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। छठे इमाम से किसी ने पूछा, मौला हम जब मौला जब भी आपसे सवाल करते हैं आप जवाब देते थे? मौला ने कहा हमारे और अल्लाह के दरमियान नूर का सुतून है, नूर का सुतून है, उसको देख लेते हैं। नूर का सुतून क्या है? आज कंप्यूटर स्क्रीन तो नूर ही सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर आपके पास कनेक्टिंग सोर्स है तो इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सोर्स जहां से होगी मिलेगा, ठीक। तो एक चीज को याद करना डीएनए, एक चीज को याद करना जिसका नाम है सेल। सेल कहते हैं खलिया जिसको कहते हैं। एक चीज को याद करना है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्या माने क्या है, वह आज कोशिश कर रहे हैं एक मखलूत इंसान बनाए जी, स्पर्म को मखलूत कर दें, किसी के हुस्न को ले लें, किसी की शजाअत को लें, हाँ किसी के इल्म को लें, सब मिक्स करके एक चोचो का मुरब्बा बनाए। कोशिश हो रही है, ये शरीयत में हराम है, ये इंसान नहीं बन रहा है। तवज्जो का तालिब हूं, इंसान नहीं बन रहा है बल्कि कई स्पर्म का नतीजा है जिसको अखलाकी कदरें बर्दाश्त नहीं करती, हराम है ये। मगर जेनेटिक इंजीनियरिंग एक फायदा है, वो क्या है, मसलन डायबिटिक मरीज है इंसान, खानदान में आया है, अच्छा डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं नहीं अच्छा भाई आपके ब्लड टेस्ट मालूम हुआ निकल गए, शुगर है, शुगर डायबिटीज, पूछता है डॉक्टर वालिद को, ठीक दादा को, बास बीमारियां खानदान में चलती हैं जी, है ना भी, बोगज़े अली भी एक ऐसी बीमारी है, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, हम तो कूद पड़ते हैं आग में अली कहकर, हम तो कूद पड़ते हैं आग में अली कहकर, बाज लोग हैदर के नाम ही से जलते हैं। पढ़ते हैं आग में अली कहकर, बाज लोग हैदर के नाम ही से जलते हैं, जिक्र मुर्तजा छेड़ा क्या बुरा किया मैंने, जिक्र मुर्तजा छेड़ा क्या बुरा किया मैंने, आप इस तरह पहलू किस लिए बदल, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, तो जरा छींटे भी फजाइल के आ जाए तो मजा होता ना जी। तो इंसान क्या है भाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक है मखलूत नुतफा हराम, लेकिन डायबिटिक मरीज हैं, आजकल की इंजीनियरिंग की कोशिश ये की जा रही है जो मरज देने वाले क्रोमोजोन या ये कि वो मरज देने वाले जीन्स को निकाल ले, फिर जो है उसको रख दें माँ के रहम में, शरीर तौर पे कोई इश्काल नहीं, मुमकिन है कि वो एक्ट खुद ब खुद मुमकिन है अगर शौहर और बीवी के दरमियान हो, गैर का तो फिर हराम ही हो जाएगा जाहिर सी बात है, ठीक। जेनेटिक इंजीनियरिंग में अगर बीमारियों को निकालना है उसमें इजाजत है, कोई इश्काल नहीं है, इसलिए कि बीमारी का तो निकालना ही चाहिए, तवज्जो का तालिब हूं, बीमारी को तो निकालना चाहिए कोई ना कोई तरीके से, हाँ, समझ में आ रही बात। अब आइए क्लोनिंग में होता क्या है, इंसान की खिलकत कहां से शुरू हुई, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नबतलीहि फजअल्लाहु समीअम बसीरा, हम ये समझ रहे हैं वालिद बुजुर्गवार की तरफ से खुदा कह रहा मा खल्क कर रहा, तवज्जो का तालिब हूं, हयात देने वाला उस नुतफे को मैं हूं, उस स्पर्म को मैं हूं, अब उस नुतफे की जगह स्पर्म की जगह सेल डाल दीजिए, सेल को भी हयात देने वाला वो है, साइंसदान नहीं है, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सेल को भी हयात देने वाला। होता क्या है, इसको अगर मैं समझाना चाहूं तो इस तरह से समझिए कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अब हिजाब है यहां पर मेंबर का ख्याल है इसलिए इतना ही काफी है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जो टेक्निक है उसी से मिलती जुलती टेक्निक है। यहां पर सीमेन का इस्तेमाल नहीं होता, यहां पर सेल का इस्तेमाल होता है। स्पर्म का इस्तेमाल नहीं होता, यहां पर सेल का इस्तेमाल होता है। सेल के इस्तेमाल से क्या फायदा होता है, सेल क्या है, डीएनए का नतीजा। इसका फायदा क्या होता है, फायदा यह होता है कि अगर बाकरी का सेल निकला तो निकला फिर बाकरी। अच्छा, ये समझिए नहीं कि बहुत बड़ी बात है, जी नहीं, माशाल्लाह बहुत से लोग यहां पर रहते हैं और ज़राअत को भी जानते हैं, आम भी खाते हैं, है ना, माशाल्लाह हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाले तो आम से मशहूर ही है। बिल्कुल बिल्कुल, आम का जमाना भी आ रहा है बहुत जल्दी, ठीक। एक मशहूर आम है, कितने मशहूर आम है, एक का नाम है लंगड़ा, नहीं मालूम कैसे हो गया, नहीं मालूम, लंगड़ा बेचारा, हालांकि अच्छा खासा रहता है वो बेचारा, मैं शायद किसी लंगड़े साहब को पसंद था, उसका नाम हो गया लंगड़ा। अच्छा, लंगड़ा, अगर लंगड़े का बीज बोइए तो लंगड़ा नहीं निकलता, खुसूसियत है ना भी, इसको बीज बोइए फिर वो लंगड़ा नहीं निकलता, वो कुछ और निकल जाता। अल्लाह अकबर, अरे वो और घर हैं जिसमें कुछ बोया जाता है कुछ निकलता है। ये मोहम्मद का घराने में मोहम्मद, एक आफताब पसे आफताब आता है, अली के घर में अली का जवाब आता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भी जमींदार हूं, मेरे वालिद भी जमींदार थे, आलिम थे, मगर खुद जमींदारी पे काम करते थे, मेहनत से मजदूरी से खाते थे। हमारे पास भी आज भी जमीन है, आज भी हमारे पास काम होता है, आम के दरख्तों को जो अच्छे अच्छे हैं उसकी पोत को आगे बढ़ाने के लिए टहनी को बीच में थोड़ा सा ऑपरेट किया जाता है, फिर उसमें मिट्टी लगा दी जाती है गीली और प्लास्टिक उसमें चढ़ाया जाता है, चंद दिनों के बाद उसमें जड़ें उतर जाती हैं, फिर उसको काट के फिर उस टहनी को लगा दिया जाता है, उसका नाम है क्लोनिंग। आपको आसान करने के लिए यही है क्लोनिंग। अब लंगड़े का बेटा क्या हुआ, लंगड़ा ही हुआ। बेटा कहाँ है, बेटा नहीं, हाथ काट के बेटा नहीं हुआ, हाथ काट के बनाया गया, वो हाथ ही निकला, वो फल करके फिर, और खास बात है कि उसी साल फल देता है, इसीलिए उसको क्या करते हैं, दो तीन साल तक के मसल देते हैं ताकि वो फूले बढ़े। तवज्जो का तालिब हूं आपके समझाने के लिए। तो इसका नाम है क्लोनिंग। इंसान की पैदाइश के लिए भी आज इंसान ने ये कोशिश की है। बहुत से लोग कहते हैं कि साइंस खुदा बन गई, कहां बन गई खुदा, अगर खुदा उस वक्त बने कि एक सेल को पैदा कर दे, है कह गया मैं, अगर इख्तियार है तो ये खलिये को पैदा करे, ये खलिये में हरकत भी साइंस नहीं दे सकती। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कब बाकरी जा रहा है, बहुत ही होशियार है, बहुत ही तेज है, अच्छी मजलिस से पढ़ता, कब ऐसे ही बाकरी बना दो। अच्छा, क्या किया, बाकरी का सेल लिया, हाँ सेल लिया, उसको दो हिस्सों में तकसीम किया, फिर उसको एग से मिला दिया, अब जो पैदा होगा बाकरी की सूरत। कितने बनाई है भाई, एक दो तीन चार पांच छ सात, 30 बाकरी बना दिए, जिधर देखे बाकरी, हर तरफ बाकरी फिर रहा। अब इसका नाम क्या हुआ, बाकरी ए, बाकरी बी, बाकरी सी, बाकरी डी, बाक, मिसाल को समझने की कोशिश कीजिए, अली बे ता, अली बा ता था, अली बे ते थे, जी है, नाम देंगे आप, नाम देंगे। साइंस जो मजबूर है अब तक समझ नहीं पाई है वो ये नुक्ता है। तो जगतालेब हूं, आपने सेल को डिवाइड करके बाकरी की सूरत तो बनाई, क्या ये यकीन है कि सीरत भी हो जाए, समझने की कोशिश कीजिए, हयात भी वैसी हो, अंदाज भी वैसा हो, सुखन भी वैसा हो, आवाज भी वैसी हो, सूरत बनाना और है, सीरत बनाना और है, सीरत रूह बनाती है जिस्म नहीं बनाता। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बोला ना परेशानी है, परेशानी नहीं कोई, हम लोग डरते ही नहीं। मुझे मालूम है कि जब चांद गाड़ी चांद पे उतरी थी अपोलो, मैंने अपने कानों से सुना बहुत से मुसलमान, वो हमारा चांद नहीं है, सब झूठे झूठी बातें। नहीं भाई चांद पे जा सकता है। मुझसे एक नौजवान ने कहा जा सकता कैसे मौलाना? हाँ देखिए कुरान, या माशर अल जिन्न वल इंस इन इस्ततअतुम अन तनफुदु मिन अक्तारिस समावाति वल अर्द फनफुदु ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान। ए इंसानो, ए जिनो, जमीन को छोड़ दो, जाओ आसमानों की सैर करो, जाओ कायनात की सैर, पॉसिबिलिटीज ऑफ गोइंग टू अदर प्लैनेट, यानी इम्कान जो दूसरे प्लैनेट पे जाने का कुरान 1400 साल बया पहले बयान किया। ये इम्कान कहां से निकलना चाहिए था? निकलना चाहिए था अपोलो मक्के से, मदीने से, निकला कहीं और। क्यों? एक ऐसे घर को छोड़ा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सारी इंसान में यही होता है, इससे हमको घबराने की जरूरत नहीं है। अब शरी मसला क्या है उलमा बयान करेंगे, मैं इतना बता दूं, अगर मेरी मेरा सेल इस्तेमाल हो रहा है और मेरे साथ मेरी हमसर है तो बच्चा मेरा ही है, किसी और का नहीं है। यह शरी मसाला है। विरासत में इसमें आएगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो खूबसूरत चीज है उसको बयान कर रहा हूं। एक्सीडेंट हुआ, कान उड़ गया, कान उड़ गया, उन्होंने कान का एक सेल लिया और लैब में उस सेल को ग्रो किया। अब जो ग्रो करेंगे तो बिल्कुल कान की सूरत हो जाएगा। इसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। कान का जो कट गया था, अब इसको एक सेल को लिया लेकर के, चूंकि डीएनए, कल मैंने बताया था जो सेल्स रिप्लेस होते हैं, तो जो गतालिब हूं, जैसा निकला था वैसे ही होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने क्या निजाम कायम किया है। अगर इस डीएनए को क्या करते हैं, कान की जगह रख दिया और वो कान बन गया, और जबान की जगह रख दिया, जबान बन गया। अब ये क्या जायज? बिल्कुल जायज, बहुत अच्छा है कि एक जमाना वो आएगा कि इंसान माजूर रहने की जरूरत नहीं है, वो कहीं दूसरे आजा नहीं ला रहा है, अपने ही आजा को ग्रो कर रहा है। ये कौन ग्रो कर रहा है? ये साइंसदान है। अल्लाह ने डीएनए में वो खूबसूरती दी है, तवज्जो का तालिब हूं। इसीलिए कहा इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नबतली है फजअलनाहु समीअन बसीरा। ये है डीएनए। ये सिर्फ मैं दो चीजें बता रहा हूं, इसकी तफसीलात भी हैं, मैं मेरे पास टाइम नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इस्लाम में क्या है, जरा रब्त लेते जाइए और लुत्फ उठाते जाइए, देखिए इस्लाम में जेनेटिक इंजीनियरिंग किसको कहते हैं। अकील के पास मौला है। अकील जीनियालॉजी के मास्टर थे। तालिब हूं। जीनियालॉजी किसको कहते हैं? इल्मुल अंसाब। जीनियालॉजी यानी नस्ब पहचानने के मास्टर थे, पूरे अरब में मशहूर थे। वो जानते थे खानदान कौन कौन है, किस किसके पास क्या है, आली किसके पास आ रहे हैं। हाँ है मेरा मजमा सवाल मेरे नौजवानों, हमसे पूछते हैं तकलीद की चक्कर क्या है मौलाना। अच्छा तकलीद की क्या चक्कर है, मौला से पूछ लीजिए। आली वो कहने वाला, सलूनी कहने वाला आज अकील के पास क्यों आ रहा है? क्या अली को मालूम नहीं था? अरे जिसने अंधेरी रात में 70 नस्लों को देखा, क्या अपनी नस्ल को नहीं देख? सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अपनी नस्ल को नहीं देख सकता था? देख सकता था, लेकिन दुनिया में एक मिसाल छोड़ना था। प्रोफेशनलिज्म का एहतराम करो, तवज्जो का तालिब हो, प्रोफेशन का एहतराम करो। अगर मरीज हो तो डॉक्टर के पास चले जाओ, खुद गोलियां मत खाओ और गोलियां मत दो। प्रोफेशनलिज्म का एहतराम करो। देखो एहतराम करो, जब बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, जब तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाए मैकेनिक के पास जाओ। ये फितरी रिएक्शन का नाम है दीन। तवज्जो का तालिब हूं। अब ये खुद ब खुद इज्तिहाद फितरी है। तवज्जो का तालिब हूं, फितरी है, कोई गैर फितरी नहीं है। गैर फितरी यह है कि कुछ नहीं जानते थे, एक आयतुल्लाह ने लिख दिया, ये कुछ आप हो गए। किसी के लिखने से कोई कुछ नहीं होता जब तक कि हासिल नहीं करता। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बुजुर्गी बा इल्मस ना वो बामामा व दस्तार। एक मतबा मैं टोरंटो में जा रहा था, मुझे मजलिस पढ़ना था, मगर इत्तेफाक से मैं अमामा भूल गया, पैंट शर्ट में चला गया, मेंबर पर बैठा हुआ तो मैं मजलिस पढ़ रहा था। एक साहब नया, अच्छा ये तुम अच्छी मजलिस पढ़ रहे थे। अरे भाई मेरा अमामा मजलिस थोड़ी पढ़ता है, तो जो का तालिब हूँ, ये कबा मेरी मजलिस थोड़ी पढ़ती है, ये जो है ये आबा नहीं। अरे बिरादरान आप तो इतने होशियार हैं, इल्म के दिलदादा, अहले बैत के मानने वाले, आप ऐसी बातों में आ जाते हैं। किसी ने दे दिया, देने से क्या होता है, देखिए उसमें दम की, उसमें दम कितना है, उसमें है सलाहियत, इल्म की नहीं है, तब कहीं जाकर के मानिए। तो हमारे पास हर किसी को नहीं मानते, जिसके पास इल्म होता है उसको मानते हैं, है ना भाई। आइए क्या किया मौलाने अकील भैया, जेनेटिक इंजीनियरिंग भैया, मुझे ऐसे घराने से शादी करा दो कि जिससे एक ऐसा बेटा पैदा हो, हाय 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 हाय, जो मेरे 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 हुसैन की मदद करे। यह है अखलाकी जेनेटिक इंजीनियरिंग, अखलाकी। ऐसे खानदान में शादी कराओ। मौला ने बताया हर जगह आई लव यू हनी। आजकल के लड़के दिल फेंक वाके होते हैं, कुछ मैं नहीं देखा। मैंने टोरंटो में नहीं नहीं जब गया था तो एक न्यूज़ पढ़ा था, एक लड़का इस लड़की से मोहब्बत करने लगा। रिपोर्टर ने पूछा ये क्यों मोहब्बत की, हर टीथ लाइक पल्स, उसके दांत बिल्कुल मोती जैसे। अब ये दांतों के लिए शादी हुई, हाँ ठीक है ना। आजकल के बच्चे क्या रुखसार पे, अरे गाल पे कोई शादी होती है, दांतों पे तो शादी हो रही है। 6 महीने बाद तलाक हो गया। रिपोर्टर ने पूछा ये तलाक कैसे, कशी नेवर ब्रश हर टीथ, उसने कभी दांतों को, जो शादी दांतों से शुरू होती है ब्रश पे खत्म हो जाती है। मेरे नौजवान बच्चों, जो शादी गाल से शुरू होती है, गाल जैसे ही सुकड़ जाती हैं खत्म हो जाती है, किरदार से जो शादी। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखो कि उसमें क्या है, इसीलिए इस्लाम ने कहा पर्दा पहना। क्यों कहा पर्दा, मेरी बहनों सुनो, वाशिंगटन में हमारी बहुत ही अच्छी तरह से पहचान दी है, अमेरिकन है जिसने इस्लाम को कबूल किया, शरीयत को कबूल किया, वो पूरी तरह से ब्लैक चादर पहनती है, यहाँ तक काली चादर। रिपोर्टर गए, आर यू ओके, वो लोग साइकाट्री तो है, नफ्सियाती हमला करना चाह रहे थे, ठीक ठाक हैं या चला गया दिमाग। उसने कहा आई एम नाउ परफेक्टली ऑल राइट, मैं बेहतरीन हूँ, अब मैं समझ गई मैं कौन हूँ। समझ गई, अब मैं समझ गई। रिपोर्टर ने कहा ये कैसे, कहा अब तक जो भी मुझे देखता था मेरे जिस्म को देखता था, फिर मोहब्बत की कोशिश करता था, मैंने अब पर्दा लगा लिया है, अब मेरे किरदार को देखना हो। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चैटिंग हुई मोहब्बत हो गई, गली में मुलाकात हुई मोहब्बत हो गई, ना मेयार रखिए, हमसर को चुनने का मेयार रखिए। जिस्म गल जाता है, जिस्म सड़ जाता है, जिस्म में तब्दीली आती है, ईमान में تبدیلی نہیں آتی ایمان میں، روز بروز حسن ہوتا ہے، روز بروز حسین ہوتا ہے ایمان. اسی لیے مولا نے کہا کرائٹیریا کیا چاہیے، معیار کیا چاہیے انتخاب کا، کہ جاؤ بتاؤ عقیل ایک ایسے گھرانے سے شادی کر دو جس سے مجھے ایسا بیٹا پیدا ہو جو میرے حسین. دیکھیے یہ ہے جینیٹک انجینئرنگ. میرا مولا کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں ایسی عورت آنی چاہیے جو میرے حسین کی. تو اسی لیے کہا جاتا ہے عباس تمنا علی کا نام ہے. عباس کون ہے؟ جس کی تمنا علی نے کی تھی. شادی ہوئی، خدا نے چار بیٹے دیے، ماں کا نام ام البنین ہو گیا، حالانکہ نام تھا فاطمہ. چونکہ بیٹوں کی ماں تھی اسی لیے ان کا نام ہی ام البنین، بیٹوں کی ماں. کیسی ماں تھی، جانتے تھے یہ گھرانے کی شجاعت، جانتے تھے اس گھرانے کی سخاوت، جانتے تھے یہ ماں وہ تھی جس نے شادی ہونے کے بعد حسنین کے قدموں کے پاس آ کر کے بچوں ماں نہیں ہوں ایک کنیز سجائی ہوں. میرے شہزادہ میں ماں نہیں ہوں، مجھے ماں نہیں سمجھنا، کنیز سمجھنا. جانتی تھی یہ گھر کون سا گھر ہے، یہ حسنین کون ہے، جس گھر پہ جس حسنین کے دروازے جھولے کو جھلانے کے لیے جبرائیل آتے ہیں. عباس شان مظہر پروردگار ہے، عباس شان مظہر پروردگار ہے، مشکل کشا مزاج ہے، حیدر وقار ہے. عباس جان فاطمہ پر جان نثار ہے، اس پر نثار فاطمہ زہرا کا پیار ہے. کون ہے عباس؟ شوق اظہار مودت کو نیا موڑ دیا، مدح کی راہ میں ایک اپنا نشاں چھوڑ دیا، تھا ارادہ بعنوان وفا کچھ لکھوں، میں نے عباس لکھا اور قلم توڑ دیا. میں نے عباس لکھا. میرے نوجوان آج میسج دینا چاہتا ہوں، عباس کے مصائب پڑھنے جا رہا ہوں، کیا سیکھیں؟ ایک ایک شہید سے ایک صفت سیکھ لیں تو سال میں مومن مومن بن جائے. عباس سے کیا سیکھیں؟ آ سیکھیے عباس جب کبھی راستے میں چلے جاتے تھے لوگ ان کی طرف پلٹتے ہوئے ڈرتے تھے. بڑے سے بڑے گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو گھٹنا گھوڑے کے کان کو لگتا تھا، پیر زمین پہ رکھتے تو گھوڑا بیچ سے نکل جاتا تھا. کربلا میں چار کی ضرورت نہیں تھی، عباس کو اجازت کی ضرورت تھی. تاریخ کربلا الٹ جاتی. میرا مجمع ساتھ رہے اور رہیں گے انشاءاللہ، ہم سب ساتھ رہیں گے، اس لیے کہ فاطمہ کو کس کا پرسہ دینا ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں فاطمہ کو؟ کربلا کے واقعے کے بعد ام البنین جاتی تھیں جنت البقیع میں، چار قبریں بناتی تھی، پھر کہتی نہ نہ ایک قبر. ہائے حسین، پیاسے حسین، مظلوم حسین، روزانہ چار بیٹوں کی قبریں پھر مٹایا، پھر ایک قبر. ہائے حسین، پیاسے حسین، ایک مرتبہ اسی طرح سے چار کو مٹایا، ایک قبر کو بنایا. ہائے حسین، پیچھے سے آواز آئی، ہائے عباس، پیاسے عباس. ام البنین پلٹی، یہ کون رو رہا ہے؟ آواز آئی، تو اپنے بیٹے کے لیے رو، میں اپنے بیٹے کے لیے. शबे आशूर, शबे आशूर है मेरे नौजवानों। देखो जुमला सुनने की कोशिश करो, अब्बास जिसने जज्बात को कंट्रोल किया, एक जुमला और सुनिए, जिसने अक्ल पर जज्बात को वार दिया, शबे आशूर है। तारीख ये कहती है कि अब्बास तलवार पर साइकिल कर रहे हैं, यानी तलवार को तेज कर रहे हैं, सामने मशाल जल रही है। और ये अजीब चचा है, जब भी अब्बास का जिक्र आता है एक 4 साला बच्ची भी साथ हो जाती है। अब्बास का जिक्र आया, सकीना याद आई, सकीना का नाम लिया, अब्बास याद आई, अलम अब्बास के साथ एक छोटा सा मशकीजा लग गया, इसलिए कि अब चचा भतीजी जुदा नहीं हो। अजरकम अल्लाह, तलवार अब्बास से अली करते हैं तलवार पे साइकिल। सहमी हुई है रात, शहर कांप रही है, सहमी हुई है रात, शहर कांप रही है। दूर से भतीजी ने देखा चचा को जलाल आ गया, समझ गई जलाल है, ये जलाल है, मशाल से नाज जाहिर हो रहा है, चेहरा सुर्ख हो चुका है। बाबा बाबा, आपने देखा चचा को गुस्सा आ गया है। हुसैन ने गौर से देखा, हू बहू ये अली का जलाल था, हू बहू ये अली का जलाल था, इसको संभालना आसान नहीं था। जैनब के पास आए, बहन जैनब देखो मेरे बाबा का जलाल है, इसको सिवाय फातिमा के कोई रोक नहीं सकता, तुम सानिया जहरा हो, सिवाय मेरी माँ के इस जलाल को कोई नहीं रोक सकता। जाओ जा करके इस जलाल को रोक दो मेरे नौजवानों। ऐजादारी कैसी करना चाहिए मुझे नहीं मालूम, सुनिए अब्बास से सबक लेकर के जाइए। वफादारी ये अपने मौला ने जो हुक्म दे दिया उस पे सरेंडर हो जाए, फिर अपने जज्बात नहीं। तवज्जो का तालिब हूं दर से आज की रात का। ज़ैनब आहिस्ता आहिस्ता फातिमा के अंदाज में कदम रखती हुई अब्बास के करीब पहुंची, वहां जज्बे नुसरत है, तलवार पे सैकल है, अब किसी का होश ही नहीं है, वरना ज़ैनब सामने आ जाए और अब्बास तहज़ीम को ना उठे, एक मतलब आवाज दी, अब्बास जवाब नहीं आया, अब्बास जवाब नहीं आया, तीसरी मरतबा का, अब्बास तुम्हें माँ फातिमा का वास्ता। अब्बास उठकर देखे, क्या देखा, शहजादी खड़ी है। शहजादी, आपने सिर्फ हुक्म दे दिया होता, आपने सिर्फ हुक्म दे दिया होता, आपकी खिदमत में आ जाता, ये आपने क्या रहमत फरमाई। सुनिए मजलूमी अब्बास की, अजीब और गरीब जुमला है। ज़ैनब ने कहा, अब्बास एक मैं ख्वाहिश करूं तो तुम मानोगे, एक ख्वाहिश में मानोगे। हजरत अब्बास ने कहा, शहजादी आप हुक्म दीजिए, कभी मैंने जिंदगी में कोई हुक्म हुआ हो नहीं अदा किया है, आप हुक्म दीजिए। अब्बास जरा सोच लो, शायद तुम्हारे लिए मुश्किल हो। कहा, शहजादी आपके हुक्म के मुकाबले में कोई चीज मुश्किल नहीं है। एक मरतबा का, अब्बास जरा तलवार को नियाम में रख लो, जरा तलवार को नाम में रख लो। अब्बास कुछ देर के लिए ज़ैनब को देखते रहे, आप यही चाहती है, अब्बास आसमान की तरफ देखा, तलवार को नाम में रखते हुए इन्ना लिल्लाह। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अक्ल पर जज्बात कुर्बान, हुक्म मौला पर समझ गई। ये ज़ैनब का कौल नहीं है, ये उधर से हुक्म आया है। अब मेरा मौला यही चाहता है, अब तलवार नहीं चलेगी। असर का वक्त आ गया, पूरा घर बर्बाद हो गया। अब्बास आए, मौला इजाजत दीजिए, अब मैं ताने सुन नहीं सकता। मौला ने कहा, अब्बास तुम लश्कर के आलमदार हो। अब्बास ने सर झुका कर कहा, मौला अब लश्कर ही कर। अजरकम अल्लाह, दो ही रातें रह गई हैं। फातिमा को फुर्सत देने वाला, ये जोश वलवला था अब्बास का। हुसैन चाहते थे ये मुड़ जाए। खैमा से आवाज आ रही थी, अल-आताश अल-आताश। अब्बास, सुना तुमने, बच्चे प्यासे हैं। कहा, मौला जा जरा पानी की सबील करो। पानी का नाम सुनना था। अब्बास ने कहा, चश्म अभी आ रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। सकीना सकीना जरा वो मश्क ला दो। जैसे ही ज़ैनब दाखिल हुई, जैसे ही अब्बास दाखिल हुए, अब ज़ैनब समझ गई कोई हालत बगड़ने वाली है। सुबह से जो जाता है वो वापस नहीं आता। बीबियां करीब आई, ज़ैनब ने अब्बास के आलम को देखा, बाजुओं को देखा, आलम को देखा, बाजुओं को देखा। ज़ैनब से अब्बास ने पूछा, शहजादी क्या बात है? शहजादी क्या बात है? अब्बास, मेरे बाबा ने कहा था मेरे बाजुओं में रस्सी आएगी। मैं सोचा करती थी जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसके बहन के बाजुओं में रस्सी कैसे आएगी। अब जा रहे हो, अब यकीन है। बस रो चुके आखिरी चंद जुमले खत्म दवा। अलम को लेकर के बाहर निकले। सकीना इधर बच्चों को जमा करती है, इधर अब्बास निकलते हैं। हुसैन ने आवाज दी, जाओ अब्बास, खुदा हाफिज। अब्बास पानी लाने के लिए गए, सकीना बच्चों को जमा करती है, आओ बच्चे, आओ 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 आओ, मेरा चचा पानी लाने गया है, पानी लाने गया है। हाथ में मशकीजे सूखे हुए और बता रही है, देखो मेरे चचा का अलम जा रहा है, चचा जा रहा है, चचा जा रहा है। एक मरतबा अलम झुका, सकीना ने कहा, चचा पानी ले रहा है, घबरा नहीं, अभी आया चाहता है। थोड़ी देर के बाद आलम फिर आ रहा था, आ रहा है, आ रहा है। एक मर्तबा आलम झुका, सकीना ने इधर देखा उधर देखा, बेचैन हुई, फिर आलम बुलंद हुआ, क्या घबराना नहीं, अभी चचा आया चाहता है। हाँ देखो, जब पानी आ जाए तो पहले मैं तुम्हें पिलाऊंगी, बाद में खुद पीऊंगी। कमल अल्लाह, बस चंद जुमले और खत्म दुआ। अलम आ रहा था, एक मरतबा दूसरी मरतबा अलम झुका। बहुत देर तक बच्ची ने देखा, कभी मैमने की तरफ, कभी मैसरे की तरफ। एक मरतबा औलाद वालो जुमला सुनो, कूजे को फेंका, हाथों को उठाया, खुदाया मुझे प...